हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अक्षत के विला में नैना और स्वीटी बहुत परेशान थीं। विवान बार बार उन्हें समझा रहा था कि सुनैना मिल जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन नैना बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। नैना की परेशानी देखकर स्वीटी और भी ज्यादा चिंतित हो गई। आम तौर पर स्वीटी की परेशानी में नैना उसे समझाती थी, लेकिन अब नैना खुद ही इतनी परेशान थी कि वो किसी को भी दिलासा दे पाने की स्थिति में नहीं थी। वो बस अक्षत के लौटने या सुनैना के मिलने की खबर का इंतजार कर रही थी। स्वीटी ने पूछा, नैना दी, भाभी और भैया को कुछ नहीं होगा ना? भाभी मिल जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद भाई सही कह रहे थे, उन्हें वहां से निकलकर हमसे मिलने यहां आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब और क्यों। नैना पहले से ही परेशान थी। स्वीटी की बात सुनकर उसके माथे पर भी बल पड़ गए। फिर भी उसने स्वीटी को दिलासा देते हुए कहा, हाँ हाँ स्वीटी, बिल्कुल कुछ नहीं होगा मेरी सोनू को, तुम परेशान मत हो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे खुद भी उसकी बहुत टेंशन हो रही है। ये सब वही विराज कर रहा है, बताया ना सोनू ने, तुम तो शायद मिली भी हो उससे। स्वीटी ने बताया, ऐसे ऑफिशियली नहीं मिली, बस एक बार ही देखा है जब वो घर पर आया था, और तब भी मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं सोचा था मैंने उसके बारे में। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। उनकी बातें सुनकर विवान थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, बस करो तुम दोनों, मैं कब से समझा रहा हूँ तुम दोनों के इस तरह टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जल्दी ही पता लग जाएगा आपकी बहन और आपकी भाभी का। नैना ने विवान की तरफ देखकर कहा, सुनैना को बोल सकते हो तुम उसे विवान, वो तुम्हारे ही साथ की होगी। विवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ जब नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो जरूर उसका नाम लेकर बोलूंगा, लेकिन अभी फिलहाल उसी बारे में सोचकर परेशान मत होइए आप दोनों, क्योंकि भाई भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं और इससे आपके जीजू की मदद जरूर हो जाएगी। विवान की बात सुनकर नैना उठकर खड़ी हो गई। क्या मतलब, अक्षत इसमें इन्वॉल्व है? नहीं नहीं, अक्षत तो खुद ही इतना परेशान है इस वक्त, ऐसे में वो, लेकिन नहीं, सुनैना को ढूंढना भी जरूरी है, बस अक्षत अपना ध्यान रखे और किसी और मुसीबत में। नैना को फिर से इतना परेशान होते देख विवान ने अपना एक हाथ सर पर रखते हुए कहा, कट कट जस्ट कट ऑफ, ये हर बात में नेगेटिव सोचना और बोलना जरूरी है क्या नैना, प्लीज। विवान के बीच में टोकने पर नैना चुप हो गई। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया जो दर्द से फट रहा था। सिर झुकाकर वो सोफे पर बैठ गई। स्वीटी नैना की तकलीफ समझती थी, उसे लगा कि विवान बिना बात के ही रूठ जा रहा है। अपनों के साथ ऐसा कुछ हो तो क्या परेशान भी नहीं हो सकती, ये सोचते हुए स्वीटी ने गुस्से से विवान की तरफ देखा। विवान ने अनजान बनते हुए अपने कंधे उचका दिए। स्वीटी आगे बढ़ी और नैना के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया। स्वीटी को अपने पास पाकर नैना ने भी एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाया। मनस्वी तेज कदमों से घर की सीढ़ियां उतर रही थी। पीछे से आते हुए अनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। मनस्वी, तुम कभी मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? मना कर रहा हूँ ना मैं, मनस्वी ने जवाब दिया। और तुम तो जैसे बड़ा मेरी बातें मानते हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं, और वैसे भी ये ओरिजिनल मेरा प्लान है और मैंने ही लोकेशन पता की है, तो फिर तुम कौन होते हो मुझे मना करने वाले? वैसे भी तुम्हें घर पर रहना चाहिए, उसका हाथ छोड़ते हुए अनय ने गुस्से में कहा। हमेशा अपनी मनमर्जी चलाती हो तुम हर चीज में, लेकिन यहाँ पर नहीं। अगर तुम मुझे अकेले नहीं जाने दे सकती तो फिर मैं भी अकेले नहीं जाने दूंगा वहाँ पर। तुम्हारे उस सन की कजिन का कोई भरोसा नहीं है, अपना हाथ छुड़ाकर मनस्वी सीढ़ियाँ उतरते हुए बोली। नहीं, वो मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना। वो घर से बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर बढ़ गई। अनय उसके रास्ते में आकर उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारे कहने से क्या होता है, जिस हालत में घर वापस आई थी वो देखा था मैंने, कुछ नहीं करेगा, और वो कुछ नहीं था सच में। उस दिन की बात याद आते ही मनस्वी ने सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं, मतलब वो शायद अपने तरीके से मुझे बातों में फंसाकर सच या कोई इन्फॉर्मेशन निकालवाना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं उससे पहले ही अनकॉन्शियस हो गई थी। अनय ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, ये बात याद है तुम्हें उस रात की, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं, तो फिर ये, मनस्वी ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, छोड़ो, जो बीत गई वो बात गई, और वैसे भी कौन सा अभी हम उस रात के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं, जो अभी आगे है वो देखो ना। अच्छा ठीक है, लेकिन ड्राइव मैं करूंगी, चल सकते हो तुम साथ में? ये बातें करते हुए वे दोनों घर से बाहर निकल आए और कार की तरफ बढ़ रहे थे। कार के सामने खड़े होकर अनय ने कहा, हाँ ठीक है, कार तुम्हारी है और लोकेशन भी तो मैंने ही पता की है, तो ड्राइव कर लेना तुम। वैसे भी मुझे ड्राइवर बनने का इतना कोई शौक नहीं है, आखिरी बात उसने धीमी आवाज में फुसफुसाकर दूसरी तरफ देखते हुए कही। मनस्वी पूरी बात ठीक से नहीं सुन पाई, उसने अनय के सामने अपना चेहरा लाते हुए पूछा, क्या क्या कहा तुमने, जरा जोर से बोलो। इस बार अनय ने बात बदलते हुए कहा, अब लड़ाई शुरू करनी है क्या यहाँ पर फिर से? अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, जहाँ हमें पहुँचना है। अनय की बात सुनकर मनस्वी कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। हाँ हाँ ठीक है, चलती हूँ, लेकिन आदित्य को इन्फॉर्म नहीं करोगे क्या? आखिर उसकी वाइफ से जुड़ा मैटर है, उसे भी आना ही चाहिए। अनय ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठते हुए कहा, क्या इन्फॉर्म करूं मैं उसे, और भला कैसे करूं? पिछले एक हफ्ते से मैं उसके साथ कांटेक्ट में ही नहीं हूं। इसके अलावा अभी हमें कंफर्म ही तो नहीं है कि हम जहां पर जा रहे हैं वहां हमें सुनैना मिल ही जाएगी। तो फिर मनस्वी ने सहमति जताते हुए कहा, यस यू आर राइट, चलो पहले हम चलते हैं, और अगर सुनैना मिल गई तो फिर आदित्य को बाद में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं ना। मनस्वी के मुँह से ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर अनय ने हाँ में अपना सिर हिलाया। मनस्वी ने कार स्टार्ट कर दी और कुछ ही सेकेंड में उनकी कार घर के मेन गेट से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ कार के मालिक के आउट ऑफ कंट्री होने का पता चलने के बाद अरविंद सीसीटीवी फुटेज और बाकी लोगों से पूछताछ करके उस कार के बारे में पता कर रहा था। वो कार अक्षत के बंगले से निकली तो वहाँ से कहाँ गई? अरविंद अपनी पूरी सिक्योरिटी टीम के साथ जुटा हुआ था। इस बीच उन्हें याद आया कि उन्हें इस बारे में आदित्य को भी अपडेट करना है, लेकिन आदित्य के पास उसका मोबाइल फोन नहीं था क्योंकि वो छिपा हुआ था। उसके कमरे में रखे लैंडलाइन फोन नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन आदित्य ने कॉल रिसीव नहीं की। उन्हें लगा कि शायद आदित्य बहुत गुस्से में है और उनकी नाकामी की वजह से उनसे बात नहीं करना चाहता है। क्रमशः